उसको शांति धाम कहा जाता है। अब ये बात भी तुम समझते हो, तुम जानते हो, दुनिया में कोई इन बातों को नहीं जानते कि शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। और ये खास भारतवासियों के लिए है, कोई और धर्म वालों के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ तुम भारतवासी। पहले पहले तुम आते हो, तो तुम पहले पहले आते हो तो तुम्हारे से बाप मिलते हैं। किससे मिलते हैं? तुम्हारे माने आत्माओं से, जो अपन को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेते हैं। उनसे पहले पहले बाप मिलते हैं। और धर्म की आत्माएं तो आत्मिक स्थिति में पूरी स्थित होती ही नहीं, देह भाग में ही रह जाती है। तो उनका नंबर बाद में है, आत्मा और परमात्मा बाप। परमपिता बाप नहीं कहा, आत्मा और परमात्मा। आत्माओं के बीच में परम पाटधारी, वो भी बाप है। बच्चे और बाप का मिलना कब होता है? बोलते हैं आत्माएं कि बच्चे और बाप अलग रहे बहुकाल। अरे ये तो हिसाब हुआ ना, पाई पैसे का हिसाब है कि बरोबर हम ही पहले आते हैं यहाँ भारत में। हमको यहाँ आए हुए अभी बहुत समय हुआ है, ये बात ठीक है ना? हम आए थे, हमको आए हुए 5000 वर्ष हो गया। बाप से विदाई लिए 5000 वर्ष हुए और यहाँ आने का पार्ट बजाने का तो हमारे लिए गाया जाता है ना कि आत्मा और परमपिता परमात्मा अलग रहे बहुकाल तो अभी तुम बच्चे जाने ना कि पहले पहले तुम आते हो स्वर्ग में पार्ट बजाने के लिए 84 का पार्ट तुम बजाते हो तो जो पहले पहले स्वर्ग का पार्ट बजाते हैं स्वर्ग का सुख पहले उनको मिलेगा ना तो तुमको मिल करके बाप फिर तुमको भेज देगा तुम फिर पहले से आएंगे अभी तो सभी आ गए और बहुत ही आ गए हैं बाकी थोड़ा बहुत रहे हैं वो भी आ जाएंगे जब उनका आना अभी शुरू होगा तो बंद करना भी शुरू होगा और तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी खत्म हो जाएगी समझा ना बच्ची क्योंकि उन सबको यहाँ आना चाहिए किन सबको जो और धर्म की आत्माएं हैं वो आ जाएंगे खाली हो जाएंगे फिर बाप यहाँ से सबको ले जाएंगे तो अच्छी तरह से समझ गए हैं ना बच्चे जो जो भी अच्छी तरह से कोई कहता होगा हम स्कूल में नहीं जाते हैं हम तो कभी कभी जाते हैं अभी कभी कभी जाना स्कूल में ये तो ला नहीं कहता है बाबा ने तो हर प्रकार का प्रबंध दिया है क्योंकि कभी भी कोई पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है विलायत में कोई पढ़ाई पोस्ट में जाती है ना ये तो बाप की पढ़ाई है अभी सुना है ये LLB MA ICS ये सब पढ़ते रहते हैं तो कोई पोस्ट में पढ़ाई भेजते थे क्या नहीं यहाँ तो देखो कितने कागज छपते होंगे और वो गाया जाता है ना भाई ये तो राजयोग की पढ़ाई है कितने भी काल कागज हो कलम हो सारे जंगल की कलम बनाए दो और सागर की स्याही बनाए दो तो भी इसका अंत नहीं पड़ेगा इतनी विस्तार की पढ़ाई है ये ईश्वरीय पढ़ाई। तो तुमने कितना कागज खलास किया होगा, कितने छपते हैं, कितने जाते हैं पोस्ट में, कहाँ कहाँ जाते हैं। पढ़ाई तो विलायत में भी जाती है। बाबा ने सहज कर दिया ना, तो बच्चे कोई हर्जा नहीं है, तुम कहाँ भी चले जाओ। यहाँ आकर के पहले पहले 7 दिन का कोर्स ले लो, तो देखो 7 दिन के कोर्स को भी पूरा नहीं समझते। ये कोर्स भी बाप ने आकर के क्वारंटाइन में बैठाया था, क्योंकि बहुत प्लेग की बीमारी। तुम तो आधा कल्प के बीमार, तो जरूर ये 7 रोज तो क्वारंटाइन में है ना। क्वारंटाइन का जो कायदा कानून निकला है हद की दुनिया में, ये तो थोड़ी थोड़ी बीमारी का जिनको होवे वो नहीं जावे कहाँ, तो वो बीमारी फैले नहीं। परंतु ये बीमारी तो सारी दुनिया में फैली हुई है। कौन सी? 5 विकारों की बीमारी। इन 5 विकारों के रोगों की बीमारी है, और सब बीमारी ही बीमार है। तो जरूर क्वारंटाइन का नाम कहाँ से निकला? ये यहाँ से ही निकला। ये 7 रोज भागवत क्यों बिठाते हैं? रामायण ग्रंथ है, ये सभी 7 रोज क्यों बिठाते हैं? यहाँ बाप कहते हैं, अभी तुम जान गए ना, तुम कितने रोगी, छी छी, एकदम कितनी बीमारी। क्या सतयुग में कोई रोग होते हैं? एकदम बिल्कुल नहीं। कंचन काया हो जाती, एवर हेल्दी हो जाती। 10, 11, 6 छठ की छठी पीज की तुम जानते हो कि हम बच्चे एवर हेल्दी थे और एवर वेल्दी थे। कितने साहूकार थे, तो 84 जन्म फिरते फिरते अभी देखो नो हेल्थ नो वेल्थ। ये जैसे खेला कलाश ही खेल हो गया, और आयु देखो कितनी हो गई है भारत की। बोल देते हैं एवरेज 30 साल 35 साल। क्यों इतनी एज हो गई? क्योंकि भोगी है, विकारी है, तो ये एवरेज एज ही कम हो गई।
तो ये सारा नाटक भारत के ऊपर बना हुआ है। बाप ने समझाया ना, वो धर्म तो बाई प्लाट है, वो जो बाकी धर्म है ना, नहीं तो ये जो बना हुआ है वो जो गाए जाते हैं कि रचयिता और रचना के आज मध्यंत का ज्ञान, वो ज्ञान तो तुम बच्चों को मिल सकता है ना, क्योंकि तुम ही आदमी आए थे। क्योंकि आज मध्यंत तुम यहाँ पाठ बजाते हो, 84 जन्म तुम बजाते हो, तो तुम्हारे को बैठ करके समझाएंगे। तो तुम बच्चे अभी जानते हो कि हमने 84 जन्म पूरा किया और हमने ये समझा है, ये 84 जन्म की स्मृति हमको आई है, हमको अपने स्वधर्म की, स्वदर्शन चक्रधारी की स्मृति आई है, बल्कि हम कल्प कल्प स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। इसके द्वारा बाबा के द्वारा स्वदर्शन चक्रधारी अभी बनते हैं और फिर बाद में चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अभी चक्रवर्ती राजा ही का तो ज्ञान मिलता है तुम बच्चों को। अभी जितना जितना जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे वो फिर ऊंचा राजा बनेंगे, नहीं तो ये तो जानते हो कि बादशाही स्थापन हो रही है, उसमें प्रजा भी चाहिए, ठीक है ना बच्ची? और प्रजा भी कोई एक प्रकार की नहीं होती है, प्रजा भी अनेक प्रकार की होती है। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, फलाना तीरा तीरा, क्योंकि राजाई भी तो नंबर वार भोगेंगे ना। हाँ, नंबर वार ही पास होंगे और नंबर वार राजाई करेंगे, तो पढ़ाई में मार्क्स होती है ना। ये तो बेद की पढ़ाई है और इसमें बरोबर जो जाती पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, औरों को पढ़ाएंगे, तो अपने दिल से पूछना चाहिए बच्चों को, हम कितने को सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण बनाते हैं। समझा ना बच्चे? इसको कहा जाता है आप समान बनाना, और ऐसे आप समान हम कितने बनाते हैं। जितना जितना जो जो बनाएंगे उतना वो ऊंच पद पाएंगे और बहुतों का कल्याण करेंगे। तो ये तो गाया जाता है ना, अंधों की लाठी। तो अभी तो समझ गए, क्योंकि एक तो है धृतराष्ट्र की औलाद, कौन धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, जिन्होंने देश की सारी धन संपत्ति अपने पास धर ली, चालाकी से कौन हुए? क्योंकि पसीने की कमाई से तो कोई इतना बड़ा साहूकार बन नहीं सकता कि सारा राष्ट्र उसकी मुट्ठी में आ जाए। तो कौन है ऐसे धृतराष्ट्र है? ये टाटा, ये बिरला, ये डालमिया, और उनसे वो संपत्ति लेकर के गद्दियां सेट करते हैं राजाई की, इलेक्शन होते हैं तो जो इलेक्शन में चुने जाते हैं उनके पास पैसा कहाँ से आता है? कौन देता है? हैं? धृतराष्ट्र ही देते हैं। तो जो पैसा देंगे वो अपने तरीके से उन बुद्धि नशीनों को जो कुर्सी पर बैठते हैं, राज करते हैं, उनको अपने तरीके से चलाएंगे ना। तो वो हुए धृतराष्ट्र और वो गद्दी नशीन हुए धृतराष्ट्र की औलाद, जिन्हें महाभारत में कहा गया दुर्योधन और दुशासन, दुष्ट युद्ध करके चुनाव जीत लेते हैं। तो एक है धृतराष्ट्र की औलाद और एक है युधिष्ठिर की औलाद। कैसा भी भयंकर युद्ध हो उस युद्ध में स्थिर रहते हैं। जिनकी यादगार माउंट आबू में अचलगढ़ दिखाई गई, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध के मैदान में माया से युद्ध करने का फन सिखलाने वाला, उसको कहा गया है युधिष्ठिर। वो हिंसक युद्ध की बात नहीं है, ये माया के युद्ध की बात है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध है। तो युद्ध सिखलाने वाला स्वयं स्थिर रहने वाला है, अटल रहने वाला है, उसको कहा जाता है युधिष्ठिर। अभी युद्ध में स्थिर रहने वाला वो तो शरीरधारी हुआ ना, कि बिना शरीर के युद्ध में स्थिर रहेगा है? अरे बिना शरीर का तो आत्माओं का बाप शिव है ना, उसे युधिष्ठिर कहेंगे, उसको तो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां है ही नहीं, तो वो युद्ध कैसे सिखाएगा? तो कौन हुआ युद्ध में स्थिर रहने वाला, जिसकी यादगार मंदिरों में दिखाई जाती है? क्या यादगार दिखाते हैं? माया का जो विकराल युद्ध है जन्म जन्मांतर का द्वैतवादी दुनिया में, ऐसा युद्ध जो स्त्री युद्ध करती है तो पुरुष का जन्म लेती, अंतमते सुगते। अब पुरुष भी वही युद्ध करता है तो स्त्री का जन्म लेता, तो बिना शरीर के युद्ध करता है क्या? बिना शरीर की इंद्रियों की युद्ध होता है क्या? तो वो अव्वल नंबर यादगार किसकी दिखाई गई है? वो है युधिष्ठिर। पांडवों का बड़ा भाई विचलित होने वाला नहीं है, शरीरधारी हुआ ना। क्या यादगार है? है शिवलिंग, लिंग साकार है, साकार की यादगार है या निराकार की यादगार है? और उस साकार लिंग में निराकारी स्टेज वाली आत्मा है या नहीं है? वो निराकारी स्टेज योगाभ्यास करके बनाई है या बनी बनाई है? हैं? बनाई है। शिव बाबा और शिव बाप, इन दोनों में से स्टेज बनाता कौन है और बनी बनाई स्टेज किसकी है? हैं? शिव बाप की है बनी बनाई स्टेज, और शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो स्टेज बनाता है। तो जो स्टेज खुद बनाता है वो स्टेज बनाने वाला बड़ा भाई हुआ पांडवों में, जो पंडा के पुत्र है। पंडा कहा जाता है जो रास्ता बताता है। कौन बताने वाला है रास्ता? हैं? निराकार शिव या साकार? रास्ता बताने वाला कौन है? हैं? निराकार ही रास्ता बताने वाला है। युक्ति बताने वाला है उसी को ज्ञान है, वो ही ज्ञान का अखूट भंडार है। ऐसा अखूट भंडार कि जिसमें से सारा ज्ञान निकाल लिया जाए तो भी अखूट भंडार बचता है, परंतु वो शरीरधारी नहीं है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसके कारण वो त्रिकालदर्शी है। तो ये युधिष्ठिर नामधारी बाप तो नहीं है कोई, आत्माओं का बाप है। हाँ ये जरूर है कि वो बाप निराकार है, वो सिखलाते हैं कि युद्ध में कैसे स्थिर रहा जाए। इसकी यादगार भारत वर्ष में शिव के मंदिरों में दिखाई गई है कि माया का जो युद्ध है वो युद्ध विजेता है या हार खाने वाला है। विजेता की वाहवाह होती है, गायन होता है, या हार खाने वाले का गायन होता है। तो वो निराकार बाबा क्या कहा, वो निराकार बाबा कौन बोल रहा है, किसके तन में बोल रहा है? वो निराकार बाबा बोलने वाली आत्मा कौन है? आत्माओं का बाप किसके द्वारा बोल रहा है? ब्रह्मा के द्वारा बोल रहा है। वो निराकार बाबा मैं ऐसे क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो बाबा है और जो बोलने वाला है वो बाबा है या बाप है, क्या है? वो सिर्फ बाप है, उसके साथ आत्माओं का कोई दूसरा संबंध बनता ही नहीं। तो वो निराकार बाबा बैठ करके तुमको माया से युद्ध सिखलाते हैं। उनका उदाहरण उन शिव के मंदिरों में दिखाया गया है। हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके लिए उनको कहा गया है शिव बाबा, मेरे को नहीं। किसने कहा है? उनको कहा गया है शिव बाबा। किनको? साकार और निराकार के मेल को कहा गया है बाबा। मैं तो साकार बनता ही नहीं, साकार और निराकार का मेल मेरे द्वारा है ही नहीं, मैं तो सिर्फ और सदैव निराकारी हूं, बल साकार में प्रवेश करता हूं तो भी मेरे को साकार का संग का रंग लगता है और धर्म पिताओं को साकार का संग का रंग लगता है, नीचे गिरते हैं। मेरे को साकार का संग का रंग नहीं लगता, तो उनको कहा गया है शिव बाबा, उनके साथ साक्षात स्वयं परमपिता है। इनके साथ जिनको शिव बाबा कहा गया है, जिनके साथ साक्षात स्वयं परमपिता है। कौन परमपिता? नाम है आत्माओं का बाप, नाम आत्मा का ही नाम है उनका, क्या शिव। वो नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। उनका नाम रख दिया है शास्त्रों में। युधिष्ठिर और उनका अपोजिट नाम है धृतराष्ट्र। इन दोनों में माया का युद्ध सिखलाने वाला कौन है, धृतराष्ट्र या युधिष्ठिर? युधिष्ठिर। युद्ध भी बताया कौन सा, हिंसक युद्ध या अहिंसक युद्ध? है अहिंसक युद्ध है। भगवान वाला अहिंसक युद्ध कैसे सिखा देंगे? जो बड़े बड़े महात्माएं होते हैं वो भी कभी हिंसा करने की शिक्षा नहीं देते। तो भगवान तो महान आत्माओं के मुकाबले बहुत ऊंचे हैं। ये महाभारत की लड़ाई की युद्ध नहीं, जो हिंसक युद्ध दिखाई है नहीं, माया पर जीत पहन करके माया जीते जगत जीत कहा गया है। और माया का भी बड़ा रूप कौन सा है? ये पांच विकार डकैत तो हैं, लेकिन इनका मुखिया कौन है? जो गाया जाता है माया जीते जगत जीत, तो माया का वो कौन सा रूप है जिसे जीतने से जगत जीत बनते हैं? नहीं तो दुनिया के कितने भी बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए हों, हिटलर नेपोलियन, कोई भी विश्व के ऊपर जगत के ऊपर विजय हासिल नहीं कर सके। वो माया का रूप है काम विकार, जिससे ये कहते हैं काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। ये गाते भी हैं सब कुछ कि माया जीते जगत जीते, इंद्रिय जीते जगत जीते, काम जीते जगत जीते, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। कि माया ते जीते जीत, माया ते हारे हार, ये बातें तो कर दी, पर माया को जीतने में कितना समय लगता है? समय लगता है या नहीं लगता है? जब हम जीत पहनते हैं, है? कोई भी युद्ध होता है दुनिया में, युद्ध के बाद ही जीत हार होती है। तो जो जीतते हैं उनको जीतने में टाइम लगता है या नहीं लगता है? समय तो लगता है। जीत कितने समय कायम रहती है? हैं? और हार कितने समय कायम रहती है? अभी तुम बच्चे समझ गए हो अच्छी तरह से कि हम अभी संगम में जीत पहन रहे हैं, छोटे से युग में, और कितना समय हमारी जीत कायम रहेगी? है आधा कल्प, 2500 साल हमारी जीत कायम रहेगी। हम किसको जीत रहे हैं? है? कोई मनुष्य दुश्मन है? कोई मनुष्य हमारा दुश्मन है जिसको हम जीत रहे हैं? नहीं, हमारे अंदर की जो कमजोरी है वो ही हमारा दुश्मन है। हम माया पर जीत पहन गए, रावण पर जीत पहन गए। ये कोई एक दो की आपस में युद्ध नहीं है, न कोई देवताओं और असुरों की लड़ाई है, और न कोई पांडवों और कौरवों की लड़ाई है। देखो ये शास्त्रों में कितनी झूठी बातें लिखी है। उन शास्त्रों में सब झूठी बातें। तो वो कहते भी हैं, लिखने वाले, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कब से झूठा सब संसार? जब से ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आए, देह अभिमानी धर्म पिताएं आए, तब से ये झूठा संसार। झूठ सदाकाल रहता है और सत्य सदाकाल रहता है। आत्मा सत्य है, वो सदाकाल है, और ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर ये सच्चा है या झूठा है? आज है, कल नहीं रहेगा। तो ये सारा संसार द्वैतवादी युग में आकर के झूठा बन गया। जब से अनेक धर्म हुए, अनेक राज्य हुए, अनेक राजाएं हुए, अनेक भाषाएं हुई, नहीं तो हम ब्राह्मणों का तो एक ही बाप है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो अब पता चला ये झूठ खंड कब से बना? जब से रावण का राज्य शुरू हुआ। और पीछे पीछे झूठ ही झूठ बनता गया। अभी तो एकदम बिल्कुल झूठे बन गए। कितने बड़े बड़े इनको झूठ बोलते हैं, किनको इनको किनको है, लक्ष्मीनारायण को झूठ बोलते हैं, लक्ष्मीनारायण झूठ से टक्कर लेते हैं या उनकी झूठ को सुन लेते हैं है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई या भारत ने दुर्गति पाई है? भारतवासियों ने दुर्गति पाई। तो कितने बड़े बड़े इनको झूठ बोलते हैं, किनको इनको माने किनको, अरे झूठ के प्रभाव में कौन बरगलाई जाती है, माताएं ज्यादा बरगलाई जाती हैं या बाप ज्यादा बरगलाई जाते हैं? झूठ के प्रभाव में बरगलावे में ज्यादा कौन आता है, है? कौन आता है? माताएं आती हैं। भारत है ही मातृ प्रधान देश, और जो देश हैं वो मातृ प्रधान नहीं है, माता की गोद में सब बच्चे खेलते। कितने धर्मावलंबी भारत में आए, आक्रामक बने, कितने कितने आक्रमण हुए, और भारत ने सबको अपनी गोद में समाया कि ठुकराया है, सबको समाया। आज भी दिल्ली में जो भारत की राजधानी है उसमें हर धर्म के लोग ढेर की ढेर तादाद में रही पड़े। दुनिया का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां इतनी बड़ी तादाद में और धर्मों के लोग रही पड़े हों। तो जो झूठे धर्म खंडे हैं सदा काल रहने वाले हैं या अल्पकाल रहने वाले हैं, 2500 वर्ष पहले ये अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनका नाम निशान नहीं था मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर। 2500 वर्ष के अंदर ये दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं आए, इनके फॉलोअर्स आए, तब ये झूठ खंड बने। तो ये झूठ खंड न पहले थे और न आगे रहने वाले। भारत ही सच्चखंड है जहां बाप आते हैं, सभी आत्माओं का बाप। भारत में क्यों आते हैं है? क्योंकि जो निराकार बाप की निराकारी प्रॉपर्टी है, क्या है, है? निराकार बाप की निराकारी प्रॉपर्टी है ज्ञान। उस ज्ञान की प्रॉपर्टी का जिसने कदर किया उसका नाम है भारत। संगम युग में भी वो आत्मा कदर करती है, शूटिंग पीरियड में, और 5-4 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी वही आत्मा है भारत, भाव माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। सतयुग त्रेता में तो सभी देवताएं ज्ञान के सार में टिके ही होते हैं। क्या है ज्ञान का सार? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में भी वो भारत है, वेद व्यास के रूप में गाया हुआ है। वेद किसने लिखे? व्यास ने लिखे। वेदों में भी जो पहला सबसे पुराना ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी लिखा हुआ है व्यास प्रसादात। व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। उसके बाद वेदों की जो व्याख्याएं निकली, आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण आदि, उपनिषद, वो सब प्रकार के शास्त्र, उनका मूल प्रणेता वही आत्मा है। इसको बाबा ने बोला, ब्रह्मा मुख से मुरलियों में बोला कि सृष्टि पर कोई चीज सदा काल कायम नहीं है, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, वो ही सत्य है। भले कोई उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन सत्य उजागर जरूर होता है। आज नहीं तो कल उजागर हो। कोई कितना भी छुपाए, कितना भी कहे कि सर्वव्यापी है, लेकिन वो एक सर्वव्यापी या एक व्यापी, वो एक व्यापी ही है। इसलिए गॉड इज वन कहा जाता है। कोई एक ही पर्सनालिटी है जो गॉड इज वन कही जाती है, बाकी कोई दूसरी पर्सनालिटी इस सारे संसार में नहीं है। जो गॉड इज ट्रुथ कही जाए, ट्रुथ इज गॉड कही जाए, तो देखो ये जो झूठे झूठे धर्म पिताएं आते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते हैं, देवहन में भरे रहते हैं, देह तो विनाशी है, अपन को देह समझते हैं, तो दुनिया में भौतिकवाद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, भौतिकवाद को बढ़ावा देते हैं, आध्यात्मवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। और ये भौतिकवादी धर्म पिताएं, देह अभिमानी धर्म पिताएं, ये देहधारी धर्म गुरु इनको झूठ बोलते रहते हैं। इनको है, इनको माने किनको? ब्रह्मा बाबा को झूठ बोलते रहते। ये माँ का पार्ट है ना? क्या माँ का पार्ट है? इनका दूसरा रूप, दूसरा नाम है जगदम्बा। जगदम्बा कहो चाहे ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा माने बड़ी माँ और जगदम्बा माने सारे जगत की माँ। बात तो एक ही है। तो ये प्रभावित होने वाले आज भी देखो, सारे जगत की माताएं, सिर्फ भारत की बात नहीं है, कोई भी धर्म की माताएं हो बच्चों से प्रभावित तो होते रहती हैं या नहीं रहती हैं? है? हाँ, कौन बच्चा है मूल रूप में? जो माताओं को प्रभावित कर देता है, कोई मूल रूप में होगा ना? कौन? लो, कृष्ण बच्चा, पहला पत्ता। कैसे प्रभावित कर देता है कि मैं ही गीता का, गीता माता का, गीता पति भगवान हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। इस मनुष्य सृष्टि में साकार में कोई दूसरी आत्मा नहीं। जो गीता माता के ऊपर सरपरस्त हो, खास भारत की माताएं बच्चों के प्रभाव में आ जाती है। जैसे बच्चे चलाना चाहते हैं वैसे ही चल पड़ती है। तो बताया कितने बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, कौन कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं वो इनको झूठ बोलते रहते हैं, इनको प्रभावित कर देते हैं। कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो कलंक लगाते हैं। किसको? है? राम बाप को कलंक लगाते हैं कि तुम्हारा राम बाप, जिसे तुम सुप्रीम गॉड फादर समझते हो, भगवान समझते हो, उसकी अपनी सीता ही चोर ले गए तो वो राज्य का काज कैसे संभालेगा? इतना कमजोर वो राजकाज कैसे करेगा सारी संसार का? ये कैसा राम राज्य है जहां राम की सीता ही चोरी हो जाए? कितना झूठ बोलते रहते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। समझा ना बच्ची? इसको कहा जाता है कलंकी धरावतार। कैसा अवतार? जिसने दुनिया के लगाए हुए कलंकों को धारण कर लिया। कलंक सबसे जास्ती किसके ऊपर लगते हैं? है? इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में कौन सी आत्मा है जिसके ऊपर सबसे जास्ती कलंक लगते हैं? है? और वो कलंकों को धारण भी कर लेती है, स्वीकार भी कर लेती है। कलंकी धर कही जाती है। वो कलंक लगते हैं बाप के ऊपर। कौन से बाप के ऊपर? दो बेहद के बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो आत्माओं के बाप के ऊपर कलंक लगने की बात ही नहीं, वो तो अकर्ता है, ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। जब बुरा करता ही नहीं तो कलंक लगने की बात ही नहीं। तो जिस बाप के ऊपर कलंक लगते हैं वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसको कहते हैं कच्छ अवतार है। का अवतार कछुए का अवतार है, मच्छ अवतार है, माछले का अवतार। अरे कच्छ अवतार है तो क्या कछुए का बच्चा है, जानवर का बच्चा है? मच्छ अवतार है तो क्या माछले का बच्चा है? ये क्या वाराह का बच्चा है? वाराह सुअर को कहा जाता है, सुअर का बच्चा है भगवान। शूकर का बच्चा बताए देते हैं, क्या क्या देखो, कितनी कितनी गाली देते हैं। बाप आकर कहते हैं देखो तुम मुझे गाली देते हो ना, चाचा है, अभी धर्म पिताओं की बात कर रहे थे कि धर्म पिताएं गाली देते हैं, उनके फॉलोअर्स गाली देते हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट करके ले जाते। अभी क्या बोला, तुम गाली देते हो ना, ऐसे क्यों कहा? तुम माने जो सामने बैठे हुए हैं, सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, उनके लिए क्यों बोला कि तुम गाली देते हो? क्योंकि तुम बच्चे सारी सृष्टि के बीज हो। क्या धर्म पिताएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जिनमें प्रवेश करते हैं वो तो उन्होंने धर्मों की जड़ों रूपी माताएं हैं। कौन है जिन्हें सतयुग के नारायण कहा जाता है? आठ नारायण, और वो आठों नारायण गिरती कला के नारायण है या चढ़ती कला के नारायण है? फिर उन नारायणों में कोई ऐसा भी है जो चढ़ती कला का हो? हैं? जो सतयुग का फर्स्ट नारायण है वहीं से उतरती कला शुरू हो जाती है। एक ही जन्म में 16 कला संपूर्ण से पौने 16 कला बन जाता है और उसको जन्म देने वाला नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है वो चढ़ती कला का नारायण है या उतरती कला का नारायण है? वो उत्तरोत्तर चढ़ती कला का नारायण है। तो देखो तुम बच्चे जो भी बच्चे हैं 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में, उनमें धर्म पिताएं भी आ गए। धर्म पिताएं जिनका आधार लेते हैं वो माताएं भी आ गई उन्होंने धर्मों की। और उन माताओं के साथ जो उन धर्मों की साकार बीज रूप आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं भी साकार भी होती हैं और निराकार भी होती है। देवी देवता सनातन धर्म का निराकार बीज आत्मा कौन? अरे भूल गए, शिव। देवी देवता सनातन धर्म का निराकार बीज आत्मा कौन है? शिव। और साकार बीज रूप आत्मा? अरे है मनुष्य सच्ची का बाप, राम बाप। ऐसे ही हर धर्म में जो ऊपर से आने वाली आत्मा है जिन्हें इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि कहा जाता है वो निराकारी बीज है। जिनमें प्रवेश करते हैं वो साकारी माताएं हैं, जड़े हैं। और उन जड़ों को भी कौन जन्म देता है? जड़ कहां से निकलती है? बीज में से। तो वो बीज रूप आत्माएं जो हैं, वो तुम बच्चे हो। जो बीज में गुण अवगुण होंगे वो जड़ों में भी गुण अवगुण जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो गुण और अवगुण तने में और टहनियों में जाएंगे या नहीं जाएंगे? पत्तों में भी जाएंगे। तो बताया वो जो धर्म पिताएं आकर गाली देते हैं उन गाली देने वालों का मूल साकार बीज कौन हुआ? वो गाली देने वालों की शूटिंग कहाँ होती है? हैं? कहाँ रिहर्सल होती है? कौन से युग में? संगम युग में। तो संगम युग में तुम बच्चे जो सारी सृष्टि के उद्धार मूर्त उत्त हर, उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाते हो बीज, धरणी में बोया जाता है, फिर सारे वृक्ष को ऊपर ले जाता है। जैसे राम बाप धरणी में बोया जाता है, धरणी माता में, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, धरणी माता में वो पिता अपने को खाक बना देता है। वही बीज जब वृक्ष बड़ा होता है तो अंत में फिर प्रत्यक्ष होता है, आदि में भी और अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही तुम बच्चे भी सारी सृष्टि के बीज हो। क्या ये रुद्रमाला के मण के एक धर्म के बीज हैं या सभी धर्मों के बीज हैं? हैं? सभी धर्मों के बीज हैं। तो जो बीज हैं उनमें बीज रूप में वो गाली देने के, ग्लानी करने के संस्कार भरे हुए हैं। सतो प्रधान होते हैं तो बाप का गायन करते हैं, सरेंडर होते हैं, और जब तपो प्रधान बनते हैं तो बाप को भूल जाते हैं, ग्लानी करने लग पड़ते हैं। तो तुम गाली देते हो ना, 10-11-66 की वाणी का सातवां पी, मुझे कितने जन तुमने गालियां दी है, फिर भी कहते हो मैं पत्थर में हूँ, मैंने पत्थर बुद्धियों में आता हूँ, ठिक्कर में हूँ। जैसे मिट्टी का ढेला होता है ठिक्कर, उसमें एक ठोकर मारो तो बिखर जाता है। जिनको एक माया की ठोकर लगे तो ज्ञान में से टूट करके फौरन बिखर जाते हैं। ऐसों में कहते हो मैं ठिक्कर बुद्धियों में आता हूँ। बित्तर बुद्धियों में आता हूँ, बीत कहते हैं दीवाल को, जो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में दीवाल बनकर के खड़े हो जाते हैं, जिस दीवाल की मुसलमान पूजा करते हैं सामने बैठकर, उस इबादत स्थल को क्या कहा जाता है, है? इस्लामियों या मुसलमानों का जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, मस्जिद। मिस तो है लेकिन कैसी मिस है, जिद्दी माया बेटी है ना। भगवान की बेटी तो है लेकिन बहुत जिद्दी बेटी है, जिस बात पर अड़ जाती है रावण की तरह। जैसे रावण अड़ गया था कि भले भगवान है तो होता रहे राम, लेकिन मैं तो तब मानूंगा जब मेरे को जीत कर दिखाए, तो ऐसे अड़ जाती है। वो माया भीतर बुद्धि है जिसको मुसलमान मिस्जिद कहते हैं, जिद करने वाली मिस, उसकी रहबरी में संगम युग में पलते हैं। अरे भगवान को पत्थर में, ठिक्कर में, बित्तर में कहना, यही तुम्हारे में सभी तरह है। बाप को इतनी गाली देते हो, तुमको समझ में ही नहीं आता है कि जिस बाप की याद करने से सारी दुनिया सुधर जाती है उसको तुम पत्थर में, ठिक्कर में, बित्तर बुद्धियों में ठोंक देते हो, सर्वव्यापी बना देते हो। सर्वव्यापी भगवान को समझने से बुद्धि एकाग्र होगी या एक बाप व्यापी को याद करने से एकाग्र होगी? सर्वव्यापी बनाई दिया तो सब की बुद्धि बिखर गई। बुद्धि बिखरने से क्या होता है, पतन होता है या उत्थान होता है? पतन होता है। जैसे भारत के राजाओं का पतन हो गया, किस लिए? टू मैनी क्वींस का पहाका है, अनेक रानियां रखी तो उन अनेक रानियों में बुद्धि बिखर गई। तुमको ये बातें समझ में ही नहीं आती हैं। और शास्त्रों में लगाए दिए है अक्षर कि मत्स्य अवतार लिया, कच्छ अवतार लिया, वाराह अवतार लिया, और फिर भी कुछ बहुत और अवतार लिए, और फिर वो पत्थर पत्थर में, कण कण में, और फिर इस समय में साधु लोग बैठकर कहते हैं शिवो हम ही भगवान हैं। देखो कितना अंधाधुंध भगवान का अहंकार लेकर के बैठे। तो घोर अंधेरा हुआ ना बच्ची, तो गाया भी जाता है एक है ज्ञान सूर्य, क्या ज्ञान का प्रकाश देने वाला एक है, जैसे स्थूल प्रकाश देने वाला इस सारे संसार में एक है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश देने वाला भी साकार में चैतन्य में कोई एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का कूट भंडार कौन है? शिव है। जिसे शास्त्रों में वसु नाम दिया है, वसु माने धन संपत्ति का भंडार, वसुदेव, और उसके बच्चे का नाम क्या दिया है? वासुदेव। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ। तो चित्रों में भी दिखाते हैं कि बाबा जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है वो दाढ़ी मूछ वाला बाबा कृष्ण बच्चे को गोद में लेकर के बैठा है। कृष्ण बच्चा क्या हुआ? बच्चा हुआ या भगवान बाप हुआ? अरे गीता में भी लिखा है कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूँ? जिसको ज्ञान देता हूँ वो संसार में सूर्य के रूप में प्रसिद्ध होता है। सूर्यवंशियों का सिरमौर, इस संसार में वो ज्ञान सूर्य है ना। जैसे स्थूल सूर्य होता है जड़ रोशनी का भंडार, तो वो ज्ञान सूर्य वो तो बाप को कहा जाएगा ना। ज्ञान का भंडार है वो वर्षा उससे किससे मिलता है? है? अरे दुनिया में भी हिस्ट्री में भी जो भी बच्चे होते हैं उनमें बड़ा बच्चा ही तो बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी बनता है तो ये आत्मा रूपी बच्चे हैं, मनुष्य आत्मा। उन मनुष्य आत्माओं में कोई बड़ा बच्चा है या नहीं है? है। जो बड़ा बच्चा है उसके लिए, उसके द्वारा भगवान बाप ही आकर के ये परंपरा चलाते हैं कि जो भी दुनिया में बाप हुए हैं वो अपने बड़े बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी का हकदार बनाते हैं। इसलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसे, जो भी मनुष्य मात्र हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने ये परंपरा चलाई क्या कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का हकदार बड़े बच्चे को बनाता हूं। कौन है वो बड़ा बच्चा? मनुष्य सृष्टि का बीज। तो जो कहा जाए ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, अंधेरा कब तक रहता है? जब तक सूर्य प्रगट नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, इन आंखों से देखने में नहीं आता है, तब तक कहते हैं अंधकार है। जब प्रकट हो जाता तो अंधकार भाग जाता है। यहां भी बाप ने बताया जो देखे इन आंखों से, किसको? उस ज्ञान सूर्य को। जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी क्यों न सुने उसके दिल में पक्का बैठ जाए क्या मेरा बाप आ गया, तो अज्ञान अंधेर कैसे विनाश नहीं होगा? अभी आ गया या नहीं आ गया? अभी क्या कहें? ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर प्रगटा या नहीं प्रगटा, आ गया या नहीं आ गया? है? अरे हाँ या ना? अरे अगर हाँ कहें तो अज्ञान का अंधकार खलास होना चाहिए। आज कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया और कल कहते हैं अरे भगवान नहीं, हम तो मुगालते में आ गए थे, ये भगवान नहीं, ये तो शैतान है। सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। जो भगवान बाप ब्रह्मा के तन से कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा और यही विविचारी ज्ञान की शूटिंग ब्रॉड ड्रामा में द्वापर युग से औरों से ज्ञान सुनने के कारण विविचारी धर्मों में कन्वर्ट कराई देगी। यहाँ शूटिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं, रिकॉर्डिंग होती है संगम में और वहाँ प्रैक्टिकल में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जो बिल्कुल ही अज्ञान था भगवान सर्वव्यापी है, कुछ भी नहीं जानते थे। जब कहते थे भगवान सर्वव्यापी है, न बाप को जानते थे न ये सारी रचना के आदि मध्यंत को जानते थे, क्योंकि बाप कोई सर्वव्यापी होता है क्या है? अरे बीज बोने वाला बाप सर्वव्यापी होगा? सर्वव्यापी होगा तो माताओं का क्या हाल होगा है? दुर्गति होगी या सदगति होगी? अभी क्या हो गई? अभी माताओं की दुर्गति हो गई। क्या समझने से दुर्गति हो गई? भगवान को सर्वव्यापी मानने से दुर्गति हो गई। हर माता का पति क्या कहा जाता? पति परमेश्वर माना जाता। जो साधु सन्यासी आया, जो गुरु बन करके बैठा, वो भी परमेश्वर बन करके बैठ जाता। शिवो हम अहम ब्रह्मास्त्र। अरे ये सारी रचना के आदि मध्य अंत को मनुष्य जानेंगे या कच्छ अवतार मच्छ अवतार जानेंगे? ये कच्छ मच्छ बारह अवतार ये तो जानवरों के अवतार है ना? जानवर बुद्धि है या मानवीय बुद्धि है? हैं? क्या है? मत्स्य अवतार कौन है? मत्स्य माने मछली, माछला है। माछली का अवतार कौन है? अरे मछली का अवतार जिसके बारे में कथा दिखाते हैं शास्त्रों में कि कोई सज्जन ने नदी में नहाने के बाद जब चुल्लू में पानी लेकर के अर्घ चढ़ाते हैं सूर्य को तो हाथ में मछली आ गई छोटी सी। तो मछली के ऊपर उनको दया आ गई, ले आए घर में ला करके उन्होंने किसी बर्तन में छोटे में डाल दी, वो बर्तन भर गया। दूसरे दिन उसमें से निकाली बड़े घड़े में डाल दी, घड़ा भी भर गया। उसमें से निकाली बड़े टब में डाल दी, वो टब भी भर गया। तो वहां से निकाली तालाब में डाल दी, वो तालाब भी भर गया। नदी में डाल दी, नदी का पानी रुकने लगा। आखिरी वहां से उठाकर सागर में डाल दी। कितना विकराल विस्तार रूप धारण कर लेती है कि राज करेगा खालसा, सारी दुनिया के ऊपर राज करती है। क्या एक को छोड़ करके वो प्रकृति जिसे जगदम्बा कहा जाता है वो सारी दुनिया पर राज्य करती है। प्रकृति पति के ऊपर राज्य नहीं कर पाती। तो बताओ वो भगवान बाप को पहचानेगी? पहचानती है? ब्रह्मा के मुख से मुरली में तो बोला है मेरे साथ इतने लंबे समय तक रहने वाले बच्चे भगवान बाप को नहीं जान पाते, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। तो देखो भगवान को कौन जानेंगे, मनुष्य का अवतार जानेंगे या जानवरों के अवतार जानेंगे? मनुष्य ही तो जानेंगे। जो जानवर का अवतार है वो तो नहीं जान सकता। सूकर का अवतार दिखाई देते हैं, सुअर का अवतार, कौन सा धर्म है जहां सुअर को बहुत मान्यता देते हैं? जैसे हिंदू लोग गाय को मान्यता देते हैं, वैसे वो धर्म के लोग सुअर को बहुत मान्यता देते हैं। उसका नाम है सुकरावतार। क्या सवेरे सूर्य निकलने से पहले कौन सा सितारा दिखाई देता है? सुकरा तारा। वही सुकरावतार जो इस्लाम धर्म का बीज है, वो आत्मा और उसके फॉलोअर्स जिनके लिए मुरली में बोला पहले कौन मरेंगे? इस्लाम ही मरेंगे, कोई दूसरे धर्म वाले पहले नहीं मरेंगे। काहे से? देह भान से। इस नारकी दुनिया में पहले कौन जन्म लिए है? इस्लामी जन्म लिए। इस्लामियों में भी जो उनका बीज है वो पहले आया होगा, तो वो हुआ सुकरावतार। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि बृहस्पति किनका गुरु था? है देवताओं का गुरु था। और उनके अपोजिट में शुक्राचार्य किसका गुरु था? राक्षसों का गुरु था। तो ये राक्षसी धर्म शुरू होता है द्वैतवादी द्वापर युग से, जब इब्राहिम आते हैं। इब्राहिम की आत्मा तो सप्तधाम से आती है, तो सात्विक होती है या तामसी होती है? हैं? सात्विक होती है, परंतु जिसमें प्रवेश करती है वो तामसी हो जाती है। उसको भी जो जन्म देने वाला है वो उसका भी बाप, उससे भी ज्यादा तामसी। तो ये दिखाते हैं कि कोई बंदर या जानवर नहीं जानेंगे भगवान को। जो ये सुकरा अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, बारह अवतार बनाए दिए, ये जानवरियत के अवतार हैं। ये जानवर के समान है। जानवर विकार भोगता है तो बुद्धि से सोचता है, क्या बुद्धि चलाता है? मन बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता, इसलिए उसको जानवर कहा जाता है। ये विकारी जंतु हैं। द्वैतवादी दुनिया के उनके बीज कहां बैठे हुए हैं? हैं? उन जानवर संप्रदायों के बीज जो हैं तो मनुष्य रूप में, लेकिन कैसी बुद्धि वाले हैं? जानवर बुद्धि वाले हैं। वो जानवर बुद्धि वाले भगवान को पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे तो ग्लानी करेंगे या गायन करेंगे? ग्लानी करने लग पड़ते हैं। इसलिए बोला कि तुम मुझे कितनी गाली देते हो। वो धर्म पिताएं तो बाद में आए, फाउंडेशन गाली देने का किसने डाला? किसने डाला? अरे किसने डाला? तुम बच्चों ने डाला। तो बाप के लिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम जानते हो बाबा यहाँ आकर के अपना और रचना के आदि बद्यंत का ज्ञान समझाते हैं, और ये जो भी ऋषि मुनि पिछाड़ी में होकर के गए हैं, क्या जो भी द्वापर युग में ऋषि मुनि हुए, जो बाद में होकर के गए हैं, वो तो भगवान के बारे में नेति नेति, हम उसके आदि अंत को नहीं जानते, ऐसे कह गए। तो वो तो नहीं जानते, न रचयिता को जानते हैं और न रचना को जानते हैं। वो शुरुआत में सृष्टि की, ये सतयुग से लेकर के कोई नहीं जानते, क्योंकि बाबा यहाँ बोल कर जाते हैं बच्चों को, बच्चे मैं तुमको ज्ञान देता हूँ ना, किसका ज्ञान? रचयिता और रचना का ज्ञान तुमको देता हूँ ना। ये बच्चे जो असली ज्ञान है जो मैं तुमको देता हूँ, वो प्रायः लोप हो जाता है। कैसा बताया? प्रायः है, बहुत करके लोप हो जाता है, पूरा लोप नहीं होता। अभी भले कलयुग का अंत है, सत्यु की आदि होने वाली है, नई दुनिया की राजधानी प्रत्यक्ष होने वाली है, घोर अज्ञान अधेरा फैला हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ अंश में सत्य है या नहीं है? तो जो कुछ न कुछ सत्य बच्चे हैं, वो कितने हुए? अरे सत्य है तो 100% सत्य कहा जाएगा, या 1% सत्य ना कहा जाए तो भी चलेगा? जैसे बाप है, कोई कहे हमारा ये बाप है, हो सकता है 1% बाप ना हो, ऐसे होता है क्या? तो वो सत्य 100% लोप नहीं होता इस दुनिया में, वो सत्य सनातन धर्म के फॉलोअर आत्माएं अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनके परिवार में एक मुखिया होता है। जैसे राजा एक मत होता है पूरे परिवार का। ऐसे नहीं कि परिवार में बड़ा बच्चा कांग्रेस पार्टी को वोट दे, छोटा बच्चा जनता पार्टी को वोट दे, बच्ची बहुजन समाज पार्टी को वोट दे और माता सपा पार्टी को वोट दे, तो अनेक मतें हो गई एक परिवार में या एक मत हुई हैं? अनेक मतें हो गई, उसको कहते हैं द्वैतवादी राज्य। द्वैत से पैदा होते हैं दैत्य, दैत्य इसको कहा जाता है, राक्षसों को दैत्य कहा जाता है और अद्वैत देवताओं को कहा जाता है। जो देवताएं कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, आज नहीं आज ये कहें कि मेरा बाप शिव बाबा, कल कहें नहीं वो मेरा बाप नहीं हो सकता और ग्लानी करने लग पड़े। तो बताया ये जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, ईश्वर का स्थापन किया हुआ सत्य सनातन धर्म है, वो सदाकाल इस सृष्टि पर रहता है, पूरा लोप नहीं होता, क्योंकि यहां भारत में सदगति हुई है ना। क्या क्या हुई है? सदगति, सच्ची गति हुई है, झूठी गति नहीं। जो आज सदगति कही जाए और कल दुर्गति हो जाए, तो कोई न कोई तो आत्मा है जो सृष्टि के आदिकाल से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक बाप ना आ जाए सभी आत्माओं का, तब तक विश्व रूप होकर रहती है, पति पत्नी एक मत होकर रहते हैं। सृष्टि के आदिकाल में परम पद कौन सा गाया हुआ है? विष्णु पद, नो विषय काल। तो सृष्टि के आदि में परम पद विष्णु है, तो अंत में क्या होगा? अंत में भी विष्णु ही होगा। उसके बाद जब शूटिंग शुरू होती है, रिहर्सल शुरू होती है, तब वो आत्मा दुर्गति में जाती है, दुर्गति में जाने की शूटिंग करती है, शूटिंग करती है। वास्तव में दुर्गति में होती नहीं है, इसलिए दुनिया में एक ही फल ऐसा है जिसको नारियल कहा जाता है, रियल या नारियल है, नारियल माने उसका रियल पार्ट नहीं है, जो भी पार्ट है वो कैसा पार्ट है, है? नारियल की तरह पार्ट। वो नारियल कहाँ लगता है? ज्ञान सागर के किनारे और बहुत ऊंचाई पर होता है या नीचा पेड़ होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है, उसके अंदर से क्या निकलता है, है? उसके अंदर से वो जल निकलता है जो जल बहुत फायदेमंद होता है, और जो भी देवताएं हैं उन देवताओं में जो महादेव है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर वो छोड़ करके चढ़ाया जाता है। खोपड़ा क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, वो खोपड़ा पत्थर की तरह हार्ड होता है या कोमल होता है, बहुत हार्ड होता है, इसलिए कहते हैं मैं पत्थर बुद्धि में आता हूँ, और पत्थर बुद्धि में आकर उसे क्या बनाता हूँ, पारस बुद्धि बनाता हूँ। तो सदगति कही जाती है, पारस बुद्धि मने स्पर्श करने मात्र से ही सदगति हो जाए, नहीं तो कहे ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है पारस कि लोहे से उसको स्पर्श करा दो तो सोना बन जाए, ये कहावत है क्या कि उसके संग के रंग में जो भी आता है वो क्या बन जाता, पारस बुद्धि सोने के समान सच्चा बन जाता है, वो आत्मा सतयुग में जन्म लेने योग्य बन जाती है। तो ज्ञान से होती है सदगति, जो पूरा ज्ञान नहीं उठाते उनकी पूरी सदगति नहीं होती, सतयुग है सदगति, कलयुग है दुर्गति। जब तुम्हारी सदगति थी तो उस सदगति होने के बाद ज्ञान की दरकार है, अरे ज्ञान की दरकार नहीं रहती, रहती है नहीं रहती, तो तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में, दुर्गति से सदगति बनने में कितना टाइम बताया, 40 से 50 वर्ष। तो जिन बच्चों के लिए 40 वर्ष का टाइम दिया, 40 वर्ष के बाद उनकी सदगति होती है या नहीं होती है, है? सदगति होती है, तो जिनकी सदगति हो जाती उनको ज्ञान लेने की दरकार है, है? ज्ञान में, ज्ञान माने जानना, जानने में मुख्य जानकारी किसकी है, बाप की। तो जो नई राजधानी नई दुनिया की स्थापन होगी, आठ के द्वारा स्थापन होगी, वो आठ जब सदगति में पहुंचेंगे तो उनको बाप की जानकारी हो चुकी होगी या नहीं हो चुकी होगी, हो चुकी होगी। कौन से बाप की जानकारी, उस बाप की जानकारी जो सदगति दाता है, क्या दाता है, सदगति दाता है। सदगति शरीर के साथ गाई हुई है या बिना शरीर के गाई हुई है? शरीर के साथ गाई हुई। तो जो सदगति देने वाला है वो शरीरधारी होना चाहिए या सिर्फ निराकार होना चाहिए? हैं? शरीरधारी होना चाहिए। तो वो ही शरीरधारी जो पत्थर बुद्धि कहा जाता है, जिस पत्थर बुद्धि में प्रवेश करके शिव बाप उसे पारस बुद्धि बनाते हैं, वो पारस बुद्धि बनने वाला ज्ञान और योग बल से पहले अपनी सदगति करता है और बाद में जिनका बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, तो उन सबकी सदगति करेगा या थोड़ों की करेगा? है सबकी सदगति दाता एक राम गाया हुआ है। शिव बाप जो आत्माओं का बाप है उसकी स्वयं की सदगति होती है। होती है, है? सदगति साकार शरीर के सहित काम होती है या बिना शरीर की होती है? जीवन में रहते जीवन मुक्ति चाहिए या बिना जीवन के जीवन मुक्ति होती है? है? जीवन में रहते रहते जीवन में दुख दर्दों से मुक्त स्टेज का अनुभव हो। तो शिव बाबा तो, शिव बाप तो जीवन में आता ही नहीं, भले जीवित में प्रवेश करता है परंतु उसके संग के रंग में आता ही नहीं। न उसकी सदगति की बात है और न उसकी दुर्गति की बात। तो बताया जिनकी सदगति हो जाती है, सदगति होने के बाद माने राजधानी में आने के बाद, नई दुनिया की राजधानी प्रत्यक्ष होने के बाद उनको ज्ञान की दरकार है ही नहीं। माना ज्ञान दाता जो बाप है वो ज्ञान दाता बाप वानप्रस्थ होकर बैठ जाता है, ये ज्ञान देता रहता है। क्या होता है? है वानप्रस्थ तो होता ही है 60 साल में, लेकिन वानप्रस्थ के बाद कौन सी स्टेज? संन्यास। सन माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। वो ज्ञान का भंडार है अकूट। कौन? शिव बाप जो कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम बच्चों को सब कुछ दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी रखा ही नहीं। तो जब सब कुछ दे दिया अपने पास कुछ रखा ही नहीं तो उसका काम खत्म हो गया या रह गया? है खत्म हो गया। वो सन्यास ले लेते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में फिर भी बच्चों से कनेक्शन रखते हैं 60 साल के बाद, लेकिन सन्यास लेने के बाद बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं रखते। तो जिनकी सदगति हो जाती है उनको ज्ञान लेने की दरकार भी नहीं रहती। ज्ञान है ही सदगति के लिए, काहे के लिए? सदगति के लिए, अज्ञान से दुर्गति और ज्ञान से सदगति। सदगति नहीं है, सदगति नहीं है तो ज्ञान सागर ही सदगति करेगा क्या? कौन करेगा? ज्ञान सागर और ज्ञान सूर्य में कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? हैं? ज्ञान सूर्य पृथ्वी माता से अटैच होकर के नहीं रहता और ज्ञान सागर सागर धरणी से अटैच होकर रहता है। तीन हिस्सा सागर फैला हुआ है और एक हिस्सा धरती माता। कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर माता की गोद में समाया हुआ है या माता सागर की गोद में समाई हुई है? कौन किसकी रचना है? माता ज्ञान सागर की रचना है। सागर से ही नदियां निकलती हैं और सागर में ही समा जाती है। तो ज्ञान सागर से ही सदगति होती है, ज्ञान सूर्य से सदगति नहीं होती है। क्योंकि क्यों? क्योंकि सूर्य तो सदैव ही माता से डिटैच होकर रहता है, वो स्थूल रोशनी का सूर्य है और ये ज्ञान की रोशनी का ज्ञान सूर्य है, चैतन्य ज्ञान सूर्य। वो जड़ सूर्य है, जड़ सितारे हैं और ये धरती के चैतन्य सितारे हैं। जैसे धरती के चैतन्य सितारों में एक सितारा ऐसा है जो ध्रुव तारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। जो भी सितारे हैं वो सब अपना अपना स्थान छोड़ते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। एक ही सितारा है जो अपना स्थान कभी छोड़ता नहीं। कौन सा? ध्रुव तारा। तो ये 9 लाख सितारे हैं धरती के सितारे, जिनमें आधे हैं ज्ञान सूर्य की चमक से चमकने वाले और आधे हैं ज्ञान चंद्रमा की चमक से चमकने वाले। जब ज्ञान चंद्रमा प्रत्यक्ष होता है तो वो रात के सितारे प्रत्यक्ष होते हैं। अंतर क्या है? चंद्रमा के सितारे चंद्रमा से रोशनी तो लेते हैं लेकिन स्वयं को प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा को प्रकाशित नहीं करते। अपने बाप का नाम बाला नहीं करते। और सूर्य के प्रकाश में पलने वाले सितारे अपने महत्व को सूर्य बाप के महत्व में मिलाए देते हैं। जैसे भारत में आज भी परंपरा है, बाप का नाम देते हैं फिर लिखते हैं सन्स कंपनी, फर्म का नाम देते हैं ना, तो बच्चों का नाम देते हैं या बाप का नाम देते हैं? बाप का नाम बाला करते हैं। तो ऐसे ही बताया कि तुम बच्चे हो ज्ञान सूर्य के बच्चे, जो ज्ञान सूर्य का कहना है कि मैं इस सृष्टि पर जब आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ, तुम सारे संसार को ज्ञान की रोशनी देने वाले हो, तुम्हारी जब सदगति होती है तो ये सब दुर्गति में पड़े हुए, जो खुद ही दुर्गति में पड़े हुए हैं दूसरे धर्म के, वो किसको सदगति कैसे देंगे? देंगे पहले खुद की सदगति, फिर दूसरों की सदगति कर सकते। जो खुद दुर्गति में पड़े हुए हैं, सब भ्रष्टाचारी कहते हैं ना, तो देखो तुम्हारी ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको कहा जाता है कौरव गवर्नमेंट। किसकी गवर्नमेंट? क्यों कौरव गवर्नमेंट कहा जाता है? कौ माने कौआ, रब माना शोरगुल। क्या करते हैं? कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। हम राम राज्य लाएंगे, दिल्ली में स्वर्ग बनाएंगे, ऐसे बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि राम राज्य तो राम ही लाएगा या कोई और लाएगा। जो राजा का राज्य होता है वो राजा ही युद्ध करके विजयी होता है तब राज्य बनाता है, या कोई दूसरे राज्य बनाते हैं? जो युद्ध में जीते हैं वो राज्य स्थापन करे, राज्य का सुख भोगे। तो वास्तव में ये कौरव गवर्नमेंट है, कुरु की औलाद। कुरु माने अरे कुछ करो, ठाले बैठे मत रहो, मेहनत करो। मेहनत करने से तुम सुखी रहो। क्या ऐसा होता है? है? दुनिया में ऐसे बहुत लोग पैदा होते हैं, साहूकार के घर में पैदा होंगे, सारी जिंदगी कुछ भी नहीं करते और बहुत मौज में रहते हैं। क्या उनके करने धरने से उनको मौज मिलती है? मिलती है, है? कैसे मिलती है मौज? है? जन्म जन्मांतर है, सुख में रहने का कौन सा तरीका है? है? जन्म जन्मांतर सुख में रहने का तरीका है जो सुखदाता बाप है उस बाप को पहचानो। सुखदाता कौन है? सुख का सागर है। क्या है? सुख का सागर है। सुख के सागर को पहचानेंगे तो जन्म जन्मांतर सुख में रहेंगे। जैसे देवताएं सतयुग त्रेता में सुख में रहते हैं या दुख में रहते हैं? कोई धंधा करते हैं, कोई कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, हैं? तो करने की बात नहीं है कर्म इंद्रियों से, करना है तो तो क्या करना है? जो जन्म जन्मांतर सुख में रहे फिर भूल गए हैं, सुखदाता बाप को पहचानेंगे, पहचान करके उसके रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे। इसलिए बोला कि तुम बच्चों का जो धर्म है सत्य सनातन धर्म देवी देवता धर्म, वो तीन हिस्सा सुखदायी है, एक हिस्से में तुम बच्चे दुखी होते हैं। कोई कोई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तो बताओ कैसे रहते हैं? जब से ज्ञान में आए, जब से बाप को पहचाना, जब से अंजाम किया कि मुझे बाप मिल गया, पाना था सो पा लिया, तब से फुल सरेंडर। तन की ताकत बाहर की दुनिया में नहीं लगाते, धन की ताकत बाहर की दुनिया में नहीं लगाते, देहधारियों को छदाम भी नहीं देते, सारे तन की ताकत, धन की ताकत, मन के संकल्पों की ताकत, समय की शक्ति, संबंधों की शक्ति, संपर्क में जीवन में जो आए हैं टाइम टू टाइम, उन संपर्क में आने वालों की शक्ति कहाँ लगाते हैं? ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। ये उनकी पहचान है। किनकी है? जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, जो भगवान बाप के सर के ऊपर 8 मणकों के रूप में दिखाए जाते हैं, अष्टदेव 8 दिशाओं के मालिक बनते हैं, अष्ट दिग्पाल 8 दिशाओं को पालने वाले, जो शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं। कितनी मूर्तियां? 8 मूर्तियां। वो 8 मूर्तियां जब सदगति को पा लेती हैं तो फिर ज्ञान लेने की दरकार नहीं रहती। शिव बाप का काम खत्म हुआ, फिर वो काम कौन करेंगे? हैं? वो 8 बच्चे ही वो कार्य करते हैं। जो सारे संसार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। क्या ज्ञान की ज्योति? कौन सा महामंत्र मंत्र फूंकते हैं उनकी बुद्धि में? अरे कोई महामंत्र है? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। किसने बोला? अरे कौन सी आत्मा ने बोला मन मना भव? शिव बाप ने। शिव बाप को तो मन ही नहीं है, वो तो सदा मन है, सदैव मन चैन में रहने वाला है, कभी बेचैन होता ही नहीं। तो वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? कि तो वो शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य में मुकर्रर रूप से, वो मनुष्य तनधारी आत्मा कहती है। संपन्न होने के बाद मत मना भव, मेरे मन में समा जा। जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ है क्या कर रहा है? क्या मुरली में बोला है? बोला है मैं तुम बच्चों को खास नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। मना नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, ये प्यार की बात है या दुत्कार की बात है? ये प्यार की भाषा है। तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, जो आत्मिक स्थिति में अपने पुरुषार्थ से स्थित हो जाते, स्वतः ही स्थित हो जाते हो, तुम्हें धक्का देने की दरकार? तुम पुष्करणी ब्राह्मण नहीं हो। पुष माने धक्का देना, तुम तो सारस्वत ब्राह्मण हो, सरस्वती पुत्र हो। तुम ज्ञान की देवी के पुत्र हो। तुम बच्चे ब्रह्मा के मुख से भगवान ने जो ज्ञान सुनाया, उससे ज्ञान के ऊपर विशेष महत्व देने वाले हो। तुम कुकवंशावली बच्चे नहीं हो। तुम्हें गोद का फकुर नहीं है, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है। तुमको किस बात का फकुर है? है कि हम मुखवंशावली हैं, ब्रह्मा के मुख से भगवान बाप ने जो ज्ञान सुनाया, हम उस वंशावली के हैं। तो जो ज्ञान का फकुर रखने वाले बच्चे हैं, वो बच्चों को कभी मुझना नहीं है, डरना नहीं है। क्या समझाने में कि कौरव गवर्नमेंट कौन है, पांडव गवर्नमेंट कौन है, पंडा कौन है, और पंडा को फॉलो करने वाले पांडव बच्चे कौन है? कुरु की औलाद कौरव कौन है? जो कुरु कहते हैं करो करो करो, बेकार मत बैठो, वो समझते हैं कि जो ऋषि मुनि भगवान की याद में जंगल में बैठे हैं, वो कुछ नहीं करते। वास्तव में ऐसा नहीं है। सब प्रकार का सुख देने वाला कौन है? हैं? भगवान ही सब प्रकार का सुख देने वाला है। किसको देता है? अपने बच्चों को देता है। वो आत्मा है। कौन? शिव बाप। आत्मा के बच्चे भी आत्मा ही हैं। जो अपने पुरुषार्थ से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, सहज राजयोगी है, डंडे खा करके धर्मराज के डंडे खाएं, सजा खाएं, और फिर देवान का छिलका उतरे, ऐसे बच्चे हठी बच्चे नहीं है, हठ योगी नहीं है, बाप के सहज राजयोगी बच्चे। तो ऐसे सहज राजयोगी बच्चों को मैं सदगति देकर जाता हूं। तो ये अक्षर शास्त्रों के हैं। कौरव गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट, यादव गवर्नमेंट, क्या कौरव कौन? जिनको ये फकुर रहता है, जो समझते हैं कि कर्म इंद्रियों से किया हुआ कर्म ही पूजा है। आज कोई भी ऑफिस में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसरों से मिलो कि पूजा किसे कहते हैं, तो कहेंगे कर्म ही पूजा है। अरे कर्म ही पूजा है तो गधा तो सबसे बड़ा पुजारी हुआ। सुबह से शाम तक कर्म करता है और रात को गाय भैंस की खाई हुई घास जो बचती है वो खा करके सो जाता है, तो गधा कर्मयोगी नहीं है, है या नहीं है? हैं? वो भी तो कर्मयोगी है, लेकिन गधा किसके डंडे के नीचे काम करता है? हैं? कुम्हार के डंडे के नीचे काम करता है। ऐसे ही जो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, वो जो कर्म कर रहे हैं कुर्सी पे बैठे बैठे, वो कर्म किसके डंडे के नीचे कर रहे हैं? उनको किसका डर है? किसी का डर है या न डर है? हैं? उनके ऊपर कोई है कर्म कराने वाला या नहीं? तो गधे के मुआफे के कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। अरे भगवान के सिखाए हुए कर्म पूजा है या विकारी मनुष्यों के सिखाए हुए कर्म पूजा है? असली पूजा क्या है? भगवान ने जो कर्म सिखाया वो असली पूजा है। भगवान ने सिखाया कि तुम अपन को पांच जड़ तत्वों का पुतला मत समझो, देह मत समझो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा का रूप ज्योति बिंदु है, जिस बिंदु की यादगार माताएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाते हैं, क्योंकि पुरुष जब युद्ध में जाते थे तो माताएं उनको विजय का टीका लगाती थी। युद्ध में पुरुष विजयी होकर के आते हैं, युद्ध में माताएं नहीं जाती हैं। तो पुरुषों की यादगार है टीका, आत्म की स्मृति में टिक करके युद्ध करें। हिंसक युद्ध की बात नहीं है। भगवान ने तो कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो और माया का युद्ध करो। जो गीता में कहा है अर्जुन किसको जी, काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं, इनको जीत ले। तो भगवान ने तो हिंसक युद्ध करना नहीं सिखाया, भगवान ने कौन सा युद्ध सिखाया है? माया का युद्ध करना सिखाया था। ये माया रावण हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। माया का मतलब ये है, मां माने नहीं आया माने आया, ये ना आया होता तो अच्छा था। कब से आया? द्वापर से आया। ओम शांति।